लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। जब प्रभु ने सियों के निर्वासितों को लौटाया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम आनंदित हो उठे। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 126वें भजन में निहित शब्द। इसी भजन की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इसराइल के विश्वासी भी आनंद और धन्यवाद ज्ञापन के साथ वर्ष ईसा पूर्व 538 को बारंबार याद किया करते थे, जब प्रभु ईश्वर ने इसराइल के लोगों को निर्वासन से मुक्ति दिलाकर उन्हें वापस सियों लौटाया था। इसीलिए गाते बजाते मंदिर की ओर बढ़ते हुए वे कहते हैं, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम आनंदित हो उठे। दुष्ट नबूखदनज़र की हार हुई और उसका शासन तहस नहस हो गया। उसके पतन की बात लगभग असंभव सी थी, किंतु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यही है हमारे विश्वास का आधार। इसराइली प्रभु के अपूर्व कार्यों पर आनंदित होकर कहते हैं, प्रभु मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को लौटा दे। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं, जो बीज लेकर जाते हैं वे रोते हुए जाते हैं, वे फूले लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। श्रोताओं, हालांकि यह ऐतिहासिक घटना 538 ईसा पूर्व घटी थी, यह आज भी समसामयिक है। प्रभु ईश्वर में विश्वास से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आवश्यकता है सदैव भलाई के रास्ते पर चलने की। आवश्यकता है सभी नकारात्मक बातों को छोड़कर केवल सकारात्मक और रचनात्मक बातों पर ध्यान देने की। प्रभु से विश्वास पूर्वक उन्हीं चीजों को मांगने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन को तथा हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को बेहतर बना सके। यदि हमारी प्रार्थना का लक्ष्य भला है तो अवश्य ही प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
प्रभु स्वामी तेरी दया का अंत नहीं है कोई, हे प्रभु स्वामी तेरी दया का अंत नहीं है कोई।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 127वें भजन पर दृष्टिपात करें। 5 पदों वाले इस भजन को सुलेमान का गीत बताया गया है, जिसमें विधाता पर भरोसे की अभिव्यक्ति की गई है। भजन के पहले 2 पद इस प्रकार हैं, यदि प्रभु ही घर न बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है, यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करें तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो, क्योंकि वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। श्रोताओ, बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में जिन सुलेमान राजा का जिक्र मिलता है, उनका शासन लगभग 950 ईसा पूर्व में कायम था। कुछ एक बाइबल आचार्यों का मानना है कि 127वें भजन को इसलिए सुलेमान का गीत कहा गया है क्योंकि इसके दूसरे पद में प्रभु के भक्त का जिक्र मिलता है, तथा उस युग में राजा सुलेमान को ही हिब्रू भाषा का यदीद्या अर्थात प्रभु भक्त या प्रभु प्रिय कहा जाता था। जैसा कि समूएल के दूसरे ग्रंथ के 12वें अध्याय के 24वें और 25वें पदों में हम पढ़ते हैं, दाऊद की पत्नी बतशेबा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका सुलेमान नाम रखा गया। प्रभु उसको प्यार करता था। उसने यह बात नातान द्वारा प्रकट की, जिसने प्रभु के कारण उसका नाम यदिद्या अर्थात प्रभु प्रिय रखा। श्रोताओ, इस भजन का पहला पद, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है, और यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करें तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। वस्तुतः इस भजन का पहला अंश कई बार गिरजा घरों की आधारशिलाओं पर लैटिन भाषा में हमें पढ़ने को मिलता है, निसी डोमिनस फ्रुस्टा, जिसका अर्थ है जब तक मालिक का हाथ न लगे तब तक सब व्यर्थ। फिर इसी पद में घर शब्द प्रयुक्त हुआ है, यहाँ इसका अर्थ है प्रभु का घर या प्रभु का मंदिर, तथा नगर शब्द से तात्पर्य है जेरूसलम नगर से। भजनकार कहता है कि जब तक किसी घर के निर्माण में, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा गिरजाघर के निर्माण कार्य पर प्रभु की आशीष न हो तो वह व्यर्थ है। मिस्त्री कितनी भी मेहनत कर लें और पहरेदार कितना ही पहरा कर उसे संभालें, वह व्यर्थ ही होगा। श्रोताओ, अभिप्राय स्पष्ट है, हमारे प्रत्येक कार्य को सफल होने के लिए उस पर प्रभु की आशीष होना अनिवार्य है। बाइबल आचार्यों ने उक्त पद के बाहरी रूप के अलावा इसके आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष की भी व्याख्या का प्रयास किया है। उनका कहना है कि इस भजन में घर और नगर जैसे शब्दों का अर्थ केवल ईंटों और सीमेंट से निर्मित मकान या भवन नहीं है, अपितु इसका अर्थ है संतति। घर परिवार वही होता है जहाँ बच्चे होते हैं। भजनकार कहता है, पुत्र प्रभु द्वारा दी गई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। पुत्र प्रभु ईश्वर द्वारा मानव को मिला वरदान होता है, तथा संतति प्रभु द्वारा दिया गया पुरस्कार, इसलिए कि प्रभु ईश्वर के बिना, उनकी आशीष के बगैर हमारा घर परिवार और घर के बच्चे केवल व्यक्तियों का झुंड मात्र होगा, वह यथार्थ घर नहीं हो सकता। अस्तु भजनकार का परामर्श है कि घर के पुत्र को प्रभु द्वारा प्रदत्त वरदान और प्रभु द्वारा दिया गया पुरस्कार माना जाए। वह प्रभु द्वारा दी गई विरासत है जिसे हम संजोए रखें तथा जिसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया करें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने ब्राजील के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया। लातिनी अमेरिका अब कोविड-19 महामारी का उपकेंद्र बन गया है। संत पापा फ्रांसिस ने फोन द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर ब्राजील के लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक चिंता व्यक्त की। उन्होंने बुधवार को अपरिचिता के महाधर्माध्यक्ष ओरलांडो ब्रादेस को फोन किया। महाधर्माध्यक्ष के अनुसार संत पापा ने वहां के हरेक व्यक्ति के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया है। संत पापा ने महाधर्माध्यक्ष से कहा, मैं हमेशा आप सभी के करीब हूं, क्योंकि मेरा हृदय सभी ब्राजील वासियों तक पहुंचता है। महाधर्माध्यक्ष ने बतलाया कि संत पापा ने न केवल ख्रिस्तों बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए अपनी प्रार्थना और स्नेह का आश्वासन दिया है। संत पापा ने यह फोन ब्राजील के लिए अत्यंत कठिन समय में किया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट अनुसार ब्राजील में कोविड-19 के करीब 7,72,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है तथा करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से संक्रमण की यह संख्या ब्राजील को अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रखा है। इस कठिन समय में संत पापा ने ब्राजील के लोगों को सलाह दी है कि वे अपने आप को ब्राजील के संरक्षिका अपरिचिता की माता मरियम को समर्पित कर दें। संत पापा फ्रांसिस ने कॉर्पस क्रिस्ती या ख्रिस्त के पांव शरीर एवं रक्त के महापर्व के पूर्व विश्वासियों को एक ट्वीट संदेश भेजकर पर्व के रहस्य पर प्रकाश डाला। ख्रिस्त के पांव शरीर एवं रक्त का पर्व अगले रविवार को मनाया जाएगा। संत पापा ने संदेश में लिखा, यीशु पापियों का स्वागत करते और उनके साथ खाते हैं। हर गिरजाघर में हर एक ख्रिस्त्याग में यही हमारे साथ होता है। यीशु हमें अपनी मेज पर खुशी से स्वागत करते हैं, जहां वे हमें अपने आप को अर्पित कर देते हैं। कॉर्पस क्रिस्ती महापर्व 13वीं शताब्दी से ही मनाया जा रहा है। बेल्जियम में सेंट जुलियाना डी कोर्लिनन के रहस्यमय अनुभवों के बाद 1247 में लीज में परम पावन यूकरिस्त को समर्पित एक स्थानीय पर्व की स्थापना की गई थी। कुछ सालों बाद सन 1263 में बोहेमिया के एक पुरोहित जो परम पावन संस्कार में यीशु की सच्ची उपस्थिति पर संदेह कर रहा था, इटली की तीर्थयात्रा में जब वह बोलसेना शहर में ख्रिस्त्याग अर्पित कर रहा था, तब उसने यूखरिस्ट के चमत्कार को महसूस किया था, जिसमें यूखरिस्ट की प्रार्थना के बाद जब रोटी तोड़ी गई थी, तब होस्तिया से रक्त की बूंदे टपक रही थी। उसके दूसरे साल 1264 में संत पापा अर्बन चौथे ने कॉर्पस क्रिस्ती के पर्व को पूरी कलीसिया के लिए घोषित किया था। ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त के महापर्व द्वारा परम पावन संस्कार में यीशु की जीवित उपस्थिति को सम्मानित किया जाता है। इस उपस्थिति की पुष्टि 1215 में चौथी लातेरन महासभा में की गई थी। बाद में 1551 में ट्रेंट की महासभा में कलीसिया की धर्म शिक्षा के इस वाक्यांश का हवाला देते हुए इस सिद्धांत को पक्के तौर पर पोस्ट किया गया था, क्योंकि ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता ने कहा है कि यह सचमुच उनका शरीर है जिसको उन्होंने रोटी के रूप में अर्पित किया है। यह हमेशा से ईश्वर की कलीसिया का दृढ़ विश्वास रहा है और यह पौत्र महासभा पुनः घोषित करता है कि रोटी और दाखरस के कॉन्सेक्रेशन में रोटी का संपूर्ण तत्व प्रभु हमारे ख्रिस्त के शरीर में बदल जाता है और दाखरस ख्रिस्त के रक्त में बदल जाता है। कैथोलिक कलीसिया में इस परिवर्तन को मूल तत्व परिवर्तन या ट्रांससब्सटेंशिएशन कहा जाता है। कॉर्पस क्रिस्ती महापर्व के अवसर पर 14 जून को संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर के संत पेत्रुस की वेदी पर ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। ख्रिस्त्याग के अंत में पावन संस्कार की आराधना और उनकी आशीष की जाएगी। वैटिकन के स्विस गार्ड ने पुष्टि दी है कि आगामी 4 अक्टूबर को 38 नए स्विस गार्डों का भर्ती समारोह कोविड-19 से सुरक्षा के नियमों का सम्मान करते हुए अतिथियों के बिना संपन्न किया जाएगा। वैटिकन स्विस गार्ड ने कहा है कि 38 नए स्विस गार्डों की प्रतिज्ञा समारोह जो 6 मई को होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था और अब 4 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उपायों के अनुरूप यह अतिथियों के बिना बंद द्वार के अंदर संपन्न होगा। स्विस गार्ड में पहली बार भर्ती हो रहे युवाओं के लिए यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जो सदियों से पोप के प्रति निष्ठा रखते हैं और जिनकी भर्ती 6 मई को की जाती है। यह तिथि 147 स्विस गार्डों की याद दिलाती है, जो 1527 में रोम के विनाश के समय संत पापा क्लेमेंट 7वें की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। वैटिकन के अप्रवासी एवं शरणार्थी विभाग द्वारा जारी इस सप्ताह के बुलेटिन में कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व स्तर पर कैथोलिक कलीसिया द्वारा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की मदद पर प्रकाश डाला गया है। अप्रवासी, विस्थापित, शरणार्थी और मानव तस्करी के शिकार लोग हमारे समाज में सबसे कमजोर हैं। कोविड-19 महामारी के समय वे अन्याय और भेदभाव के शिकार हुए हैं, जो उनके अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य को जोखिम में डालता है। यही कारण है कि समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद के अप्रवासी एवं शरणार्थी विभाग ने एक साप्ताहिक बुलेटिन शुरू की है, जिसके माध्यम से जानकारियां दी जाती हैं, समस्याओं एवं समाधान के प्रति जागरूकता लाई जाती है तथा विभिन्न कैथोलिक संचालकों द्वारा कमजोर लोगों और समुदायों के साथ होने की पहल की जाती है। इस सप्ताह के बुलेटिन में विश्व के सबसे गरीब क्षेत्र जैसे शरणार्थी शिविर, झोपड़ियों एवं आदिवासी समुदायों का विश्लेषण किया गया है। कलीसिया कोविड-19 से सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण रेखा के रूप में उभर रही है। कैथोलिक राहत सेवा, अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक अप्रवासी आयोग और विश्व भर के स्थानीय कार्यता संगठनों द्वारा उनकी मदद की जा रही है। भारत की कैथोलिक कलीसिया देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद एवं सुरक्षा में आगे रही है, खासकर वह मजदूरों एवं उनके परिवारों को खाद्य सामग्री प्रदान कर रही है जो अपने अस्थायी आवासों में रह रहे हैं। रिक्शा चालक जैसे लाचार लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान कर राहत देने के बाद रांची महाधर्म प्रांत ने बुधवार को मीडिया कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण प्रदान कर उनके कार्यों को सहयोग एवं सम्मान प्रदान किया। बुधवार को रांची कैथोलिक कलीसिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकाशनों एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के सैकड़ों मीडिया कर्मियों को सुरक्षा सामग्री प्रदान की गई। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।